نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سیشن حدیث نمبر 112 اور کتاب الوضو سے شروع ہوگا. کتاب کا پیج 148 ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کا پہلا ٹاپک. باب نمبر 3 ہے, لا یتوضأ من الشک حتی یستیقن. لا نہیں یتوضأ وضو کرے من سے الشک کی شک, حتی یہاں تک کہ یستیقن یقین ہو جائے, یعنی شک سے وضو نہ کرے یہاں تک کہ حدث کا یقین نہ ہو جائے. کیا مطلب ہے اس کا کہ جب انسان کو شک ہو کسی چیز پہ کہ میرا وضو ہوا ہے کہ نہیں, وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں, تو پھر اس پہ وضو نہ توڑے. ابھی پڑھیں گے حدیث تو آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی بات. عن عبداللہ ابن یزید الانصاری رضی اللہ عنہ انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن زید انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا حال بیان کیا. کیا کہا اس کا؟ شکا جو ہے نا شکایت کرنا, وہی مطلب ہے شکوا شکایت. یعنی ایک شخص کے بارے میں یہ بات آپ نے بیان کی. وہ کون سا شخص تھا؟ الرجل الذی یخیل الیہ. یہ وہ شخص تھا جس کا خیال تھا اپنے بارے میں, انہ بے شک وہ, یجد الشیء فی الصلاۃ, پاتا ہے کوئی چیز نماز میں. اشارہ ہے کہ اس کو نماز میں یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میرے جسم سے ہوا خارج ہو گئی ہے. تو سوال کیا کہ وہ کیا کرے. یہ آپ کے بھی کوئسچنز تھے پچھلے سیشن میں کہ وضو ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فقالا, تو آپ نے فرمایا, لا نہیں ین فتل, نہ وہ پھرے, او یا لا نہیں ین صرف, وہاں سے ہٹے, یعنی نہ تو وہ نماز چھوڑے نہ اس جگہ سے ہٹے, حتی یسمع صوتاً او یجد ریحاً, یہاں تک کہ اس کو آواز آ جائے یا پھر اس کی بدبو کو پالے. دیکھیے اتنا خوبصورت کرائیٹیرین اللہ کے نبی نے ہمیں دے دیا کہ وضو کب ٹوٹتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں جسم سے ہوا خارج ہونے کی نشانی. نمبر ایک کہ آواز آتی ہے, تھوڑا سا پریشر کے ساتھ جب نکلتا ہے جسم سے کچھ تو آواز آتی ہے. آواز آ جائے پھر سمجھیں گے کہ آپ واقعی جسم سے ہوا خارج ہوئی ہے. اور دوسری چیز ہے اگر آواز نہیں آتی تو بیڈ سمیل, جو ایک سب جانتے ہیں کہ جسم کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں اور گندگی, اس کی وجہ سے آتی ہے. تو بدبو خود کو محسوس ہو یا آواز آئے, پھر آپ سمجھیں گے کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے, محض شک کی بنا پر نہ ہو. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہونا چاہیے کہ شک کیوں ہوتا ہے؟ کیا نماز میں یہ شک ہو سکتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے جبکہ نہ ٹوٹا ہو؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار کہا کہ دشمن ہے تمہارا شیطان جو تمہارے پیچھے پڑا رہتا ہے. شیطان نے اس چیز کی قسم کھائی تھی کہ اس نے انسان کو جنت سے دور کرنا ہے, لہٰذا وہ دن رات سوتے جاگتے ہر وقت میں انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب ایک انسان وضو کرنے لگتا ہے تو اس کو وضو الجھا دیتا ہے. کبھی اس کو کہتا ہے کہ تیرا تو ابھی وضو ہی نہیں ہوا, کبھی اس کو وسوسوں میں ڈال دے گا, کبھی کچھ, کبھی کہے گا ابھی تو تجھے واش روم میں جانا ہے. اور آپ خود پرسنلی فیل کریں کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے واش روم یوز کرتے ہیں تو آپ کو پیشاب کرنے کے بعد دوبارہ پھر فیل ہوتا ہے. ابھی اٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں لگتا ہے کچھ رہ گیا, پھر کرتے ہیں. وہ اصل میں ٹال رہا ہوتا ہے کہ آپ کی نماز کا وقت ٹل جائے. پھر آپ بیٹھتے ہیں, پھر بیٹھتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں. پہلے وہ آپ کو وضو سے روکتا ہے, یہ اس کا پہلا اسٹیپ ہے. پہلے تو ویسے ہی نہیں پڑھنے دیتا نا, یہ کہہ کر کے جی نمازیں تو معاف ہیں اور ہم تو بہت نیک ہیں اور لائک دس, اور نمازوں سے کیا ہوتا ہے. خیر جب ایک بندہ ارادہ کر کے بیٹھ ہی جاتا ہے تو پھر ہو گیا, وضو کرنے میں الجھا دیا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اتنا وضو میں الجھاتا ہے کہ اس کو کہتا ہے تیرا تو حصہ ہی نہیں گیلا ہوا, وہ پھر بیچارہ وضو کرتا ہے. پھر کہتا نہیں تیری کونیاں خشک ہیں, وہ اسی میں پڑا رہتا ہے کہ اس کی جماعت کی نماز چلی جاتی ہے. خیر بندہ وضو کر کے نکلتا ہے, جائے نماز پہ کھڑا ہونے لگتا ہے, پھر شیطان آ جاتا ہے, کبھی وسوسے کبھی کچھ. جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں تو بس اب وہ دشمن کیا کرتا ہے, وہ آپ کے پاس کیسے آتا ہے, یہ جسم میں ہوا بنتا ہے, پھر آتا ہے, وہ جان کی آوازیں نکالے گا, اچھا پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے. دو چیزیں بہت زیادہ فیل کریں گے نماز کے ساتھ ہی. ایک تو یہ کہ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں جو سارا دن ادھر ادھر کھیلتے رہیں گے, ان کو کیئر ہی نہیں ہے, جس وقت آپ نماز شروع کریں گے نا وہ آپ کے صف کے آگے سے بھاگیں گے. آپ جا کے آزمائیے گا, اسکول میں بھی یہی چیز ہے, مسجدوں میں بھی یہی چیز ہے, گھروں میں یہ شیطان لے کے آتا ہے, بچہ رونے لگ جاتا ہے. بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ بچے کو رلا دے گا, یعنی اس کی پوری کوشش ہے کہ اگنور زیادہ بھاگ جائے. खैर अब जिस्म से हवा की वो ऐसी आवाजें करता है, तो बगैर किसी वजह के सिर्फ पेट में अगर आपको कुछ फीलिंग आ रही है, या समटाइम फील भी होता है कि शायद जिस्म से कुछ निकला है, तो उसे नमाज नहीं तोड़े जब तक कि ये ना हो। और आप लोगों ने फील किया होगा, बल्कि आप फील कीजिएगा, जिन सिस्टर्स को इस तरह की तकलीफ होती है जिस्म से हवा निकलने की या कुछ, जब ऐसी हालत होती है ना तो उसमें आवाज आती है ना बू आती है, तो फिर आप उसको इग्नोर कीजिए, उस पर ज्यादा बात ना कीजिए। तो यकीन के साथ ये काम करना है। यहाँ से एक और बात पता चलती है कि हमारा दीन जो है ना यकीनी चीज़ों पे पीछे लगाता है, महज शक और वहम की हमारी नमाज में कोई जगह नहीं है और इससे ऊपर रखना चाहिए। और जो बंदा शक करता है ना, उसको हर चीज़ में फिर गलत चीज़ नज़र ही आ जाती है। तो अल्लाह ताला ने हमेशा इंसान को बहुत ईजी गोइंग फील करवाया है, और ये नहीं कि हर वक्त इसी बोझ में पड़े रहो। अच्छा, हमारे यहाँ इन छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू क्यों बनाते हैं? मैं बदगुमानी से हट के ये बात करूंगी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये दीन के पिलर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये दीन की मुराद नहीं है। दीज आर द टूल्स, दीज आर नॉट द मंजिल, या आप कह सकते हैं कि ये हमारा आखिरी मुदा या जो चीज़ मतलूब है वो नहीं है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात के जरिए अल्लाह ताला हमें तैयार करता है कि हम अल्लाह के हुक्मों को मिलें, हम दुनिया में अल्लाह के पैगाम को आम करें, हम नबी के मिशन पे चलें, हम दुनिया में अल्लाह के दीन को गालिब करें। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, जो अल्लाह ने नबी से काम लिया था कि पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन गालिब हो। हम सबसे अल्लाह ये चाहता है। अच्छा, शैतान क्या करता है? और उसमें मदद हो जाती है उनकी, उन बहुत महदूद तरीके से दीन की सोच रखने वाले दीनदारों से, जो हर वक्त नमाज रोजे को असल बनाई रखते हैं। वजू इधर करो, पानी मिट्टी के लोटे से करो, बैठ के करो, किबला रुख करो, साबुन नहीं लगा सकते, बेरी के पत्तों से करो, और वजू करते हुए यूं करो, पाँव ऊपर रखो, नीचे रखो। इतना उसमें लग गया कि उम्मत को आज लग रहा है सिर्फ नमाज के ही मसले हैं, सिर्फ हज के ही मसले हैं, रोजे के ही मसले हैं। दीन मसाइल का नाम नहीं है, मसाइल से निबटने का नाम है। अगर आप नमाज की छोटी छोटी चीजों को इतना उलझाते हैं कि उस पर आज उम्मत बट गई, आज आप देखिए हमारे फिरके क्यों बन गए इतने। अमूमन फिरके में फर्क नमाज का, और नमाज में कोई ये नहीं कहता फर्ज ना पढ़ो, कोई ये नहीं कहता रुकू ना करो, क्याम ना करो, सब मानते हैं। बहस किस में कि क्याम करते वक्त हाथ किधर बांधो और सजदा कैसे करो। तो जब आप हदीस में एक तरीका पढ़ लेते हैं तो रिलैक्स, इजी गोइंग, इससे भड़के आगे चलो। मैं आपको इसकी मिसाल दूंगी कि अगर किसी को पता चले कि दुश्मन आ गया है सरहद पे, अब उसको क्या करना है? दुश्मन का मुकाबला करना है ना, कि किसी भी तरह वो उस दुश्मन को मुल्क के अंदर आने से रोक सके, दैट्स इट। अब वो इसमें पड़ जाए कि दुश्मन के लिए तीर खरीदूं, कि तलवार खरीदूं, कि मोटी खरीदूं, कि पतली खरीदूं, किस कंपनी की खरीदूं, किस ब्रांड की खरीदूं, दुश्मन आएगा उतने देर में आपको मार के चला जाएगा। आज उम्मत के साथ ये हो रहा है, माजरत के साथ, यानी आज हम इतने छोटे छोटे मसलों में उलझ गए कि हमने लोगों को सिर्फ दीन की इंतहा नमाज बताई, हालांकि ये इब्तिदा थी, यानी वो चीजें जो पीक नहीं थी, बेस थी जिस पे दीन खड़ा होता है, आज उम्मत उससे गाफिल है, और इसीलिए ऊपर से सारा मामला बिखरा हुआ है। जिस दिन नमाज, रोजे, हज, जकात को असल रखे, मेरा अल्लाह से ताल्लुक है, हाँ सल्लु कमा रही तू मोनी असली, नबी ने कहा जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखते वैसे पढ़ लो, दैट्स इट। इसमें बहसें नहीं करनी चाहिए, इल्म ले लें। अभी आप हदीस से ये पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने जिंदगी दी, आपको नमाज की बुक भी पढ़ा देंगे। एक एक मसला जो वो हदीस से अखज है, 2-3 महीने में आप अपनी नमाज को एक्सीलेंट दर्जे पे अल्लाह के नबी की नमाज के बराबर कर दें, दैट्स इट, फिर कान बंद। उसके बाद अगर कभी आने वाले वक्त में आपको लगता है कि ये हदीस इस पे मैं आज से 4 साल से अमल कर रही हूँ, अब आज की रिसर्च से कुछ अल्लाह ने इल्म वाले ऐसे उठाए कि वो कहते हैं कि इस हदीस में ये जोफ है, ये ठीक है, हदीस है, यकीन है, सच्ची बात है, वो ले लेंगे, दैट्स इट। हम इन बातों को बहस ना बनाए, नंबर एक, झगड़ों का जरिया ना बनाए, पब्लिकली कभी डिस्कस ना करें, घरों में, शादियों में, महफिलों में। आज वो औरतें मर्द भी आपस दूसरों के नमाजों के मसले बता रहे होते हैं जिनको पूरी नमाज की शायद एक दफा भी हदीस से पढ़ने का मौका नहीं मिल सका। तो लिहाजा इन चीजों के ऊपर, छोटी छोटी बातों पर फतवे नहीं देने चाहिए। अगला बाब देखिए, तखफीफ फिल वुदू, हल्का वुजू करना। अन इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। अब यहाँ अन्हुमा क्यों आया, सब बता दें, एक ही साथ बोल दें। मैं नए लोगों के लिए ऐसी बातें दोहराती हूँ ताकि वो भी इंजॉय करें। जी बताइए, इबन कौन है? बेटा, अब्दुल्ला। अब्बास कौन है? बाप। बेटा भी सहाबी हो और बाप भी सहाबी हो तो दोनों का नाम आ जाता है, यानी जो सहाबी ऐसे जिनके बाप भी मुसलमान थे तो उनके नाम के साथ रदी अल्लाह अनहु की जगह रदी अल्लाह अनहुमात। कितने खुशकिस्मत बेटे हैं कि जो अपने बाप के साथ भी इसी सनत को लगवाते हैं। क्या कहा उन्होंने? अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामा, बेशक नबी सल्लम सो गए। ये जो नामा का लफ्ज है, नम नौम, नौम किसको कहते हैं? नींद को। कहाँ लिखा है? ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, आयतुल कुर्सी में, कि अल्लाह को ना ऊंघ आती है ना पकड़। और नौम जो होता है ना, नींद का इब्तदाई दर्जा ऐसा होता है, सीना होता है इब्तदाई दर्जा जिसको आप ऊंघ कहते हैं, और नौम होती गहरी नींद। नौम का मिलता हुआ कोई लफ्ज आपने और भी पढ़ा? जिन्होंने आयतुल कुर्सी की तफसीर सुनी उनको याद आएगा, वो क्या होती है? नियाम। नियाम क्या होती है? जिसमें तलवार का कवर, तो तलवार नियाम में जाके सो जाती है क्योंकि अब वो काम नहीं करती। जैसे मेरे पास भी घर में एक छुरी है जिसका ऊपर कवर है, कवर में डाल दें तो वो जाहिर सेफ हो गई, तो वो भी यही लफ्ज है कि अल्लाह के नबी सोए, हत्ता यहां तक कि नफखा, उनकी आवाज उभरने लगी, यानी खराटे आने लगे। नफखा का मतलब होता है आवाज, जैसे थोड़ी सी गुरगुराहट है ना, तो मुराद ये कि आप इतनी गहरी नींद सोए कि खराटे भरने लगे। थुम्मा सल्ला, फिर आपने नमाज पढ़ी, वलम यतवद्दा, फिर वजू भी नहीं किया, व रुब्बमा, और ऐसा फिर भी हुआ, यानी आपने नमाज पढ़ी वजू भी ना किया। और कहते हैं कैसी बात हुई? काला, फिर कहा, इस्तजा हत्ता नफखा थुम्मा क़ामा फसल्ला, फिर कहते हैं कि कभी ऐसा भी हुआ कि आप करवट पर लेटे यहां तक कि सांस की आवाज आने लगी, फिर बेदार हुए तो आपने नमाज पढ़ी। अब इस हदीस से क्या पता चलता है? पहली बात देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराटे भरने लगे और उठकर आपने बगैर वजू के नमाज पढ़ी। फिर रावी कहते हैं कि कभी ऐसा भी हुआ कि अल्लाह के नबी करवट पर लेटे, यदि पहली सूरत ही बैठ के, दूसरी सूरत ही लेट के, और आपकी आवाज भी, फिर उठे तो नमाज पढ़ी। अब इससे हमने तो भी ये बात पढ़ी है, आगे पढ़ेंगे, इसमें आपने तो नहीं अभी पढ़ी, लेकिन ये कि सोने से वजू टूट जाता है, नबी सल्लम का क्यों नहीं टूटा? इसके बारे में हदीस से पता चलता है, अल्लाह के नबी के जब मेराज का मौका था तो उसे एक रात पहले चंद फरिश्ते आए, तो उन्होंने अल्लाह के नबी को डायग्नोज किया कि अच्छा ये है वो जिनको हमने लेके जाना है। तो उस वक्त उन फरिश्तों ने आपस में जो बात की थी उसमें एक बात ये थी कि ये नबी है कि जिसकी आंख सोती है लेकिन उसका दिल नहीं सोता, या दिल सोता है तो आंख नहीं सोती। तो अल्लाह के नबी सल्लम गाफिल होकर नहीं सोते थे। आम इंसान अगर ऐसा गहरा सो जाए कि खराटे आने लगे, लेट गए, तो फिर उसका वजू टूट जाता है। ठीक है, तो यह हमारे लिए क्या बात है कि इस तरह से कभी मामला हो। फिर इसमें आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इब्ने अब्बास एक और रिवायत में कहते हैं कि आप जब उठे तो आपने पानी से भरे हुए एक पुराने मशकीजे से हल्का सा वजू किया, यानी आज़ा पर ज्यादा पानी नहीं डाला या अपने आज़ा को सिर्फ एक बार धोया। तो ये दोनों बातें मौजूद हैं, कभी एक अमल हुआ कभी दूसरा हुआ। अगला बाब देखिए, इस बाग़ुल वुज़ू, मुकम्मल करना वुज़ू को, अच्छी तरह से वुज़ू को करना। अन उसामा इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अरफ़ता, अल्लाह के नबी सल्लम लौटे अरफा से, यानी एक दफ़ा अरफा से लौटे। आपका तो अरफा कौन सी जगह? अरफात, यानी जहाँ हज किया जाता है। और यकीनन ये वही वक्त होगा जब आप हज्जतुल विदा से आए थे, आपने पूरी जिंदगी में एक ही हज किया था, उसके बारे में ये जिक्र है। हत्ता यहाँ तक के ईजा, जब कान न थे वो भी शाह भी एक घाटी के पास, शाह कहते हैं घाटी, तंग सी जगह होती है पहाड़ियों में, नजला फिर उतरे पेशाब भी उस घाटी के पास, फबाला फिर पेशाब किया। जो बाला का लफ्ज है ना, पेशाब करना, यूरिनेट करना, बॉल कहते हैं अरबी जुबान में पेशाब को। सुम्मा फिर या तवद्दा, फिर आपने वजू किया, वलम नहीं युस्बिगुल वुदू, और फिर पूरा वजू नहीं किया, यानी थोड़ा सा वजू किया। फकुल्तु, तो मैंने कहा, अस्सलातु या रसूल अल्लाह, क्या नमाज का वक्त हो गया? फकाला, अस्सलातु अमामका, आपने फरमाया नमाज आगे जाकर पढ़ेंगे। मुराजे के भी वक्त तो नहीं हुआ लेकिन आपने वक्त से पहले वजू कर लिया और उनको बताया कि आगे जाकर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फरकीबा, फिर वो सवार हो गए। रकीबा से मुराद होता है खास तौर पे ऊंट पे या सवारी पे सवार होना। फलम्मा, फिर जब जाल मुजदलिफा था, फिर आप पहुंच के मुजदलिफा में, नजला, आपको पता है ना कि मुजदलिफा ही जाते हैं ना अरफात से, तो हजरतुल विदा का मौका है, आप वहां से पहुंचे मुजदलिफा, फिर आप उतरे, फतवद्दा, फिर आपने दोबारा पूरा वजू किया। फस वगल वजू, बहुत अच्छी तरह वजू किया। सुम्मा अकीमत इस्सला, तो फिर इकामत कही गई नमाज की, यानी तकबीर कही गई। फसल मगरिबा, फिर आपने मगरिब पढ़ी। फिर सुम्मा अनाह कुल्लु इंसान बईरा तो फी मंजिलती, फिर बांध दिया हर एक ने अपने ऊंट को उसकी जगह पर, यानी ऊंट जो सुबह से चल रहे थे उनको एक जगह पे बिठा दिया। सुम्मा फिर उकीमत इशाओ, यानी इकामत कही गई इशा की। फसल्ला, फिर नमाज पढ़ी। वलम, और नहीं युसल्ली बैनहुमा, उनके दरमियान कुछ और पढ़ा। अब इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि नमाज के आने से पहले, वक्त से पहले वजू किया जा सकता है और ये पसंदीदा अमल है। हदीस में आता है कि जब इंसान वजू करके इंतजार करता है तो उसका अजर शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरी बात ये पता चलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आपको फारिग करने के लिए एक कोने का इंतखाब किया, शार्प यानी घाटी या गड़ा है, तो सरेआम ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लंके बात खुलेआम सामने बैठकर ऐसी हाजात से फारिग होते थे, तो अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं किया। फिर दूसरी बात है कि सफर था तो आपने वजू पूरा ना किया, यानी हल्का सा वजू किया। असल में ये जो हदीस है ना, ये आपको बता रही है कि वक्त की मुनासिबत से आप वजू हल्का भी कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। हल्के वजू से मतलब होता है कि बस एक ही दफा आपने हर रोज को धोया, और पूरा भारी करना, पूरा क्या यानी तीन दफा करके करना। और इंशाल्लाह हम इसके तरीके में पढ़ेंगे कि एक दफा जिसने किया उसका वजू पूरा होता है, ज्यादा से ज्यादा तीन है, तीन से ज्यादा दफा कोई जगह नहीं धोई जा सकती। फिर इसमें एक और चीज पता चलती है कि सफर में भी अल्लाह के नबी नमाज का एहतमाम करते थे। कौन पढ़ेगा सफर में नमाजें? जो हजर में पढ़ता है, जो घर में पढ़ता है। सफर में तो हर चीज अपसाइड डाउन हुई होती है, कुछ समझ ही नहीं आता, वक्त नहीं बाज़ दफा पता चलता है, लेकिन जिनका दिल नमाज में लगा होता है वो नमाज के लिए तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि मगरिब और ईशा इकट्ठी पड़ी, क्या बड़ी बात है। ये वैसे अदाएं नहीं समझ आती जो हज के मौके पे हैं। यहाँ कहते हैं नमाज का वक्त हो जाए तो फौरन नमाज पढ़ो, हज पे चले जाएं, आप देखिए अरफात का दिन है जिसको आप इतने तमाम से जाते हैं, मनाते हैं, वहां जाके नमाजों के साथ आप क्या कर रहे हैं? जोहर को सिर से पढ़ रहे हैं, पकड़े हैं, खड़े हैं, कोई काम भी नहीं, रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, गर्मी है, परेशानी है, कोई नहीं, जोहर के और असर को साथ पढ़ते हैं। फिर मगरिब का वक्त शुरू हो रहा है, सब चलो निकलो अरफात से, निकलो मुजदलिफा। कभी समझ ही नहीं आती, हम कहते हैं निकलना है नमाज पढ़े, कर यहाँ नहीं पढ़नी, तुमने वहां पढ़नी है। असल में हज जो ना हमारी मर्जियां तोड़ता है, हमारी अन्ना का बुत तोड़ता है। और आज जो लोगों ने सिर्फ नमाज रोजे का हाल बना दिया है, वो कभी भी उस रूह के साथ हज और उमरा कर ही नहीं सकते कि जो असल में उसमें रूह देनी मकसूद है। अल्लाह ताला असल में ये सिखाता है कि जब मैं कहूँ करो तो करो, जब मैं चाहूँ रोको तो रुक जाओ। फिर आप देखिए कि इतना इंसान थक चुका होता है अरफात से, मुजदलिफा आने की वजह से बाज दफा पैदल जाना पड़ता है, ट्रैफिक जैम होता है। हर एक का अपना एक्सपीरियंस होगा माशाल्लाह जो हज कर चुके हैं, तो नमाज आपने जाके मुजदलिफा में ही पढ़नी है। वहां तो जरा सा 19 से 20 हो जाए तो लोग मसले पूछते हैं, दम दे दें, कुर्बानी करें, हमारा हज कबूल हुआ कि नहीं। जो ही उधर से जहाज पे सवार होते हैं तो फिर कोई मसला नहीं, फिर ये फर्ज नमाजों का भी कोई मसला नहीं, और शादी ब्याह के किबले भी फर्क है। तो असल जो चीज है ना वो ये सीखने की है कि इंसान अल्लाह के हुक्मों को माने। अब आप देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि अल्लाह के नबी अरफात से निकले तो मुजदलिफा में आकर अपने नमाज पढ़ी। आज पूरी दुनिया से जो लोग हज करने आते हैं वो यही काम करते हैं ना, कोई इसे ऑपोजिट क्यों नहीं करता कि देखो अरफात तो भर गया, इतने जो लोग हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं पहले मुजदलिफा में चली जाती हूँ, इधर के रिचुअल करके मैं अरफात आती हूँ, चले मैं मीना में नहीं जाती, सीधा मक्का चली जाती हूँ। वहां तो वो 4-5 दिन यूं बंदा ऐसे होता है ना जैसे लकीर का फकीर बना हुआ है। अल्लाह कहते हैं ये सीखो, तवाफ करते तो क्यों सीखो, क्या कर रहे हो, इन सलाती व नुसुकी, यानी हज और उमरा भी मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में वो नहीं है इस वक्त जो करने की जरूरत है। बाज़ दफा मैंने लाखों रुपया देखते हैं, लोग लाखों रुपया से बना अपने मुल्क का रुपया लगाते हैं हज और उमरे के शौक में, लेकिन आप उनको इल्म के लिए बुलाएं तो बहुत कम में आते हैं। सीख के हज करना या उमरा करना और बगैर सीखे करना, इसमें वही हिसाब है जो शुरू में हमने बात की, पूरी तैयारी के साथ कहीं जाना या ऐसे ही उठा के कोई बिस्तर से निकाल के आपको ले जाए। बिलीव मी रियली, कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे वहां पहुंचे होते हैं कि जिनकी नमाज भी ठीक नहीं होती, बेचारे मसले ही पूछ रहे होते हैं, घबराए ही होते हैं, हाँ ये हो गया दम तो नहीं, हाय बाल नजर आ गया दम तो नहीं, चेहरे पे कपड़ा लग गया दम तो नहीं है। तो इसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इल्म को लेने की तौफीक दे, और इसके बाद जब भी कभी अल्लाह हमें हज उमरे पे ले जाए, हम जाने से पहले भरपूर तैयारी के साथ जाएं और इन मसाइल को समझ कर जाएं। अगला बाब देखिएगा, गसलुल वजही बिल यदैनी मिन गरफती वाहिदा। गसलुल वजही, चेहरे को धोना, बिल यदैनी दोनों हाथों से, मिन गरफती चुल्लू वाहिदतिन एक, यानी एक ही चुल्लू भर पानी है बस, उससे हाथों को धो लेना, उससे मुंह को धो लेना, ये भी जायज है। अन इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा अन्नहु तवद्दा, हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि उन्होंने वजू किया, फगसल वजहहु, फिर अपना मुंह धोया, अखज़ा गरफता मिम्माई, फिर इसी तरह का एक चुल्लू लिया पानी का, फमद मजा, फिर उससे कुल्ली की, मद मजा क्या था, कुल्ली करना जो हम मुंह में पानी डाल के छोड़ते हैं, बिहा साथ उसके, फिर उसके बाद वस्तन शका, फिर उसके बाद नाक में पानी डाला, वही जो हम वजू करने का तरीका है, सुम्मा फिर अखजा पकड़ लिया, गरफता एक चुल्लू में माइन पानी का, फजाला बिहा हाकजा, फिर इसी तरह आपने एक दफा फिर किया, यानी आपने एक चुल्लू पानी लिया, हाथ से मिलाकर इससे मुंह धोया, फिर एक चुल्लू लिया, अपना दायां हाथ धोया, और इसी तरह से अदाफहा इला यदिहिल उखरा, फिर दूसरे हाथ को धोया, फगसला बिहा वजहहू, फिर अपने चेहरे को धोया, सुम्मा खज़ा गरफत मिन माइन, फिर पानी का एक चुल्लू लिया, फगसला बिहा यदहुल यमना, फिर उससे अपना दायां हाथ धोया, सुम्मा खज़ा गरफत मिन माइन, फिर आपने अपने हाथ में पानी लिया, फगसला बिहा यदहुल यसरा, फिर उससे बायां हाथ धोया लेफ्ट, सुम्मा मसखा, फिर उसके बाद अपने मसख किया बिरासी ही अपने सर का, सुम्मा खजा, फिर लिया गरफता चुल्लू में माई पानी का, फरशा अला रिजली हिल यमना, फिर उसको बहाया अपने दाएं पांव पर, हत्ता यहां तक के गसलहा, उसको धोया, सुम्मा खजा गरफता नुखरा, फिर आपने पानी लिया दूसरे हाथ में, और फगसला बिहा यानी रिजलहुल युसरा, फिर उससे धोया दूसरे को यानी बाएं को, सुम्मा काला, फिर कहा, हा कजाराई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दा। ये है वो तरीका जिस पे मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू करते देखा। रवाहुल बुखारी। आप देख रहे हैं कि इस एक हदीस में पूरे वजू का तरीका आ गया। इसमें आपको तरीका समझ आ गया जो बहुत आपको शायद अजीब लगा होगा कि एक चुल्लू भरते हैं और उसी से एक काम कर रहे हैं, फिर दूसरा चुल्लू भरते हैं तो दूसरा। चुल्लू क्या होता है? दोनों हाथों को जोड़ना, ठीक है, और बाज दफा एक हाथ से यानी जस्ट लाइक ऐसे करना, इससे भी साबित है। तो हम इंशाल्लाह चंद रिवायतें और पढ़ लें ताकि आपको एक हदीस समझ आएगी, अब दूसरी भी आ जाएगी, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे इसका वजू का पूरा तरीका आपको बताएंगे यहाँ अल्लाह के हुक्म से। फिर अगला बाब देख लीजिए, मा यकुल इंदल खला, बैतुल खला जाने की दुआ, यानी जब वॉशरूम में जाएं यूज करें तो फिर क्या करें। अन अनस रदियल्लाहु अन्हु काल, हज़रत अनस से रिवायत है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल खला, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते थे बैतुल खला में। ये जो लफ्ज़ हम बोलते हैं ना बैतुल खला, बैत कहते हैं घर को, खला खाली करना, खुलासी लेना, यानी गंदगी दूर करते हैं ना इंग्लिश में एक्सक्रीशन के मानों में, कि जब अपनी बॉडी से कुछ चीज़ें एक्सक्रीट करना चाहते हैं तो उस जगह पे जब अल्लाह के नबी जाते तो कौला कहते। आप सब भी दोहरा लीजिए मेरे साथ,
अल्लाहुम्मा
इन्नी आऊज़ुबिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नी बेशक मैं आऊज़ु पनाह में आती हूँ बिका तेरी मिन से, अल खुबूसी नापाक जिन्नों, वल खबाइस और नापाक जिन्ननियों से, यानी ये मुज़क्कर खुबूस और खबाइस मुअन्नस है। अब ये जो जिन्ननियों का लफ्ज़ हम बोलते हैं ये हम अपनी समझ के लिए बोलते हैं, लफ्ज़ी मतलब यही है कि नापाक चीज़ों और इसी तरह उनकी नापाकियों से तेरी पनाह में आते हैं। अब आप देखिए कि ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लम क्यों मांगते थे। पहली बात देखिए कि शैतान का टेस्ट बड़ा गंदा है, वो हमेशा गंदी जगहों पे रहता है, उसको फिजिकली भी जो गंदगी होती है फिल्थ है और ट्रैश है वो अच्छा लगता है, और मॉरली भी उसको फिल्थी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लाइक उसको यानी क्लब्स और शराब और रंग और साज आवाज, ऐसी जगह जहाँ शैतान के काम अच्छे हों उसको वो अच्छी लगते हैं। जब एक इंसान बाहर होता है, जैसे अब मैं और आप बाहर हैं इस वक्त, नंबर एक हम दुआएं पढ़ते हैं, सुबह शाम की दुआएं भी, आयतुल कुर्सी भी है, दूसरी बात हम कवर्ड होते हैं, ये बड़ा गहरा नुक्ता है। जब हम कवर्ड होते हैं ना तो शैतान का वार हम पे नहीं होता। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि जैसे सर्दी है, इस्लाम तो है तो सर्दी बाहर लेकिन हमारे जिस्म तक नहीं पहुंचती, या बाहर कोई जर्म्स हो और आपने अपने मुंह पे कोई मास्क लगा लिया तो वो जर्म्स नहीं जाते ना। जूं ही हम बाथरूम में जाते हैं, नंबर एक कि हम बाथरूम में अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते, दूसरी बात हम जिस्म से कपड़ा हटाते हैं अपनी जरूरत के लिए, जूं ही जिस्म से कपड़ा हटा शैतान नाचता हुआ हमारे ऊपर आ जाएगा। इस्लाम में जो न्यूडिटी को नापसंद किया गया, वल्गर ड्रेसेस को, गंदे कपड़े पहनने से और जिस्म भी झलके पतले और ऐसे वैसे, उसके पीछे हिकमत ये है कि जब कोई औरत या मर्द अपने सतर का एहतमाम नहीं करता, उसका जिस्म झलकता है, फौरन शैतान उस पर आता है, फिर वो कभी उसको बहका देगा, कभी पहले तो नचवाएगा और क्या कुछ करेगा, बाद में घर आके डिप्रेशन के दौरे डलेंगे और न जाने क्या होगा। तो अंदर जानकर हम पनाह ले लेते हैं। यहाँ ये याद रखिए कि आज के दौर में जब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टॉयलेट्स मौजूद हैं, उसके दरवाजे भी हैं लॉक्ड हैं, तो दरवाजे से अंदर जाने से पहले बाहर पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हमारे टॉयलेट भी गंदे नहीं हैं, आज जो ये बहुत शिद्दत पे लोग चले जाते हैं ना वॉशरूम के अंदर वॉशरूम के बाहर, तो वॉशरूम आज क्लीन है। देखिए ना, अगर आप अभी सफाई करें तो आपके बाहर कॉरिडोर और वॉशरूम में क्या फर्क है। आप पढ़ेंगे इसमें इंशाल्लाह, माँ तहूरा पानी पाक करता है, पानी पाक कर देता है आपकी जाहरी को गंदगी नहीं, आपने डिटर्जेंट डाले, सोप डाले, जिफ डाला, जो भी डाला साफ हो गए, ठीक है। लेकिन पहले दौर में गंदगी वहां पड़ी रहती थी, जैसे आपने भी कभी आज से 20-25-30 साल पहले देखा होगा ये कुछ, तो लिहाजा बेहतर है कि आप बाहर ही पढ़ें, लेकिन बरहना होने की हालत में और गंदगी की हालत में पढ़ने से बेहतर है कि आप बाथरूम में जाने से पहले पढ़ लें। ठीक है, तो ऐसी ये शऊर की बात है, इसको पढ़िए। चलिए, यहाँ तो सिर्फ इतनी बात है, ये बताइए कि बाथरूम से बाहर आने की क्या दुआ है? सब पढ़ दें, गुफराना का, बिस्मिका गुफराना का। अब गुफराना का क्यों कहा? बाथरूम से निकले, हम कोई फिल्म देख के थोड़ी निकले हैं जो हम कह रहे हैं गुफराना का, अल्लाह तेरी बख्शिश चाहिए। जी, इतनी देर अल्लाह तेरा जिक्र नहीं कर सकी, इस पे तू मुझे माफ कर दे। और अल्लाह, हो सकता है कि मैंने वक्त ज्यादा लगा दिया हो, आज तो बाथरूम में जाके मैगजीन ना पढ़े, और वहां जाके, आगे तो लोग मैगजीन पढ़ते थे, अब जाके वहां मैसेज चेक करते हैं कि फारिग बैठे साथ मैसेजिंग कर लें, तो अवॉइड करना चाहिए। आप देखिए, कुछ लोग वॉशरूम में बहुत टाइम लगाते हैं ना, सिर्फ एक छोटी सी बात, हम कहां मरना चाहेंगे? जहां बंदा ज्यादा लगाता है वक्त, वहां चांसेस बढ़ जाते हैं ना उसकी मौत के आने के। तो क्या हम वॉशरूम में मरना चाहते हैं? हम ऐसी गंदगी में मरे? तो ये वो जगह है जहां से बस खुलासी छुड़ाएं और वापस आए। अब मसला क्या है कि जब पैसे इतने लगाए हैं बाथरूम पे, तो अब इस्तेमाल ना करें। जब घर बनते हैं, यहाँ तो मजबूरी है कि सीधे सीधी चीजें हैं, लेकिन अपने मुल्कों में जाके देखे, सबसे ज्यादा पैसा बाथरूमों पे लगता है। यानी गोया के शैतान के बेडरूम पे सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं। हमारा बेडरूम सादा सा और शैतान का बेडरूम इतना है। कौन सा शैतान का? बाथरूम है ना। तो वहां जब पैसा लगाया, फिर उसमें सारे कुजी कुजी चीजें भी हैं, तो फिर जाके अंदर दिल तो लगेगा। वहां फिर डेकोरेशन पीस भी लोग रख देते हैं, भाई इसकी क्या मुसीबत है, वो मैचिंग है, रख रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इन चीजों को बस ऐसा सिंपल सा रखें कि वहां आपका दिल ना लगे। और मैंने ऐसे बाथरूम भी देखे कि बाथरूम में म्यूजिक भी, और अब आप ढूंढ देना चले जाएं, और जो शावर है कर्टन उसके अंदर स्पीकर लगे, और उसके अंदर MP3 प्लेयर हैं, जो मर्जी गाएं सुने नाए। पहले लोग खुद गाते थे, अब सुनते भी हैं और गाते भी हैं। तो ये फुरसुदा बातें, मोमिन का ये मिजाज नहीं होता। जिनको किसी की को परवाह नहीं, वो तो ऐसे काम कर सकते हैं। तो लिहाजा इन चीजों को, बहुत सारी और भी खराबियां आजकल हमारे वॉशरूम्स में, लेकिन कम अज कम अपने आप को बचाने के लिए इन सारी दुआओं का एहतमाम करने की जरूरत है। फिर अगला बाब देखिए, वदुल मा इंदल खलाई, बैतुल खला के पास पानी रखना। अब आज हमारी तो टूटियों में पानी आता है, गर्म भी आता है, ठंडा आता है, फिर उसका टैप सेट कर लो, सेट लो कितना प्रेशर है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या है इस हदीस में, अनिबन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अल खला। इब्न अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लम एक बार बैतुल खला में गए, ये खुद फरमाते हैं, फवदातु लहु वदुअन। ये क्या आ गया लफ्ज भाई, वदुअन? कहते हैं मैंने वहां रखा उनके लिए वदू रखा, और वधु के पानी रखा, वजू का पानी रखा, वज का पानी रखा। फकाला, तो आपने बाहर आकर पूछा, मन वदा हाजा, ये किसने पानी रखा है? फाखबिरा, तो मैंने उनको बता दिया। फकाला, फिर आपने कहा, अल्लाहुम्मा फक्किहू फिद्दीन, ए अल्लाह इसे दीन की समझ अता फरमा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये दुआ तो आपने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने अब्बास दी थी। आपने देखा कि ये दुआ कब दी थी? दुआएं दिल से निकलती हैं, याद रखिए। जो खिदमत करता है वो हमेशा दुआएं लेता है, खिदमत में अजमत है। बड़े लोग कहते थे कि अल्लाह के नबी को खुशी हुई। एक आप किसी से कहते हैं ये करो, वो भी कोई कर दे तो वो भी ठीक है, वो इताअत है, लेकिन उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। ये वो काम है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और एकदम बाहर आके देखा पानी भी, ये किसने रखा? मुराद ये कि और किसी को नहीं समझ आई, इनको आ गई, अच्छा तो अल्लाह मफक्के हो बेदीन। और आपको था कि हिब्रुल उम्मा का लकब है इब्ने अब्बास का, अल्लाह के नबी ने इनको दुआ दी थी, और आपने कहा तुम्हें से जिसने कुरान की तफसीर पढ़नी है वो इब्ने अब्बास से पढ़ ले। और आज भी इनकी तफसीर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इल्म में बरकत दे। हमेशा पुराने असलाफ जो हमारे, उनकी तफासीर को देखा करें तो आपको उसमें से बहुत बड़े बड़े जौहर दिखेंगे। ज़ाहिर हमें लगता है कि वो तो आम बातें थी, आज के दौर में बहुत एलेबोरेटेड है, हालांकि मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती। पिछली दौर की तफासीर की अल्फाज मुश्किल होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो बहरहाल ये दुआ मिली, आप भी मेरे साथ ये दुआ दोहरा लें, अल्लाहुम्मा फक्किहू फिद्दीन, ए अल्लाह फिक दे इनको दीन की। फिक से मुराद जहां समझ बूझ है। तो मैं भी आपके लिए और आप मेरे लिए ये दुआ करें, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें हकीकत में दीन की समझ दे दे। बहुत सारे दीनदार दीनदार होते हैं, हाफिज भी होंगे, आलिम भी होंगे, लेकिन फिक बिल्कुल और चीज है। और फिक कहते हैं समझ बूझ को, यानी जिस वक्त जो काम करने की जरूरत है वही करना। अगला बाब देख ले, तुस्क़बिलुल क़िबलतु बिबौलिन वला गाइतिन, कज़ाए हाजत के वक्त किबला रुख करके ना बैठना। ये बहुत मारूफ मसला है हमारे यहाँ कि क्या टॉयलेट्स का रुख हम किबले की तरफ करें ना करें, इसको पढ़ें फिर इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। अन अबी अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی ان سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا اتا احدکم الغائط، جب کوئی آئے تم میں سے قضائے حاجت کے لیے، فلا پس نہ، یستقبل القبلتا، وہ منہ کرے قبلہ کی طرف، اور ولا اور نہ، یولیہ زہرہو، نہ اس کی طرف پشت کرے، شرقو او غربو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیا کرو. اب آپ دیکھیں یہاں مشرق اور مغرب کیوں کہا، کیونکہ مدینہ میں قبلے کا رخ جو تھا وہ جنوب کی طرف تھا. آپ دیکھیں نا، یوں نہ کرو یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے، بلکہ جنوب کی طرف کر لو، یعنی اپنے ملک کی طرف سے مشرق اور مغرب جو ہوگا. اچھا، اب یہ بات ہے تو اس سے اگلی حدیث پڑھیں. اس مسئلے کو بھی آپ پینڈنگ پہ کریں، کیونکہ آگے اس سے اپوزٹ بات بھی آئے گی، تو دونوں کو ملا کے آپ کو انشاءاللہ جو آج ہم کریں وہ دلیل مل جائے گی. باب دیکھ لیجئے، من تبرز علی اللبنتین، من جو کوئی تبرز فارغ ہوتا ہے، علل اوپر، علی لبنتین دو اینٹوں پہ، یعنی اینٹوں پر بیٹھ کر قضائے حاجت سے فارغ ہونا، کھلی جگہ میں لوگ بیٹھتے تھے اس کا ذکر ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان بے شک ناسن یقولن، لوگ کہتے تھے، اذا قعدت علی حاجتک، پس جب تم اپنی قضائے حاجت کے لیے بیٹھو، فلا تستقبل القبلتا، تو نہ تو قبلے کی طرف منہ کرو، ولا بیت المقدسی، اور نہ بیت المقدس کی طرف، لقد، تو تحقیق، ارتقیتو، میں سوار ہوا، یومن، ایک دن، علی ظہری بیت لنا، اپنے گھر کی چھت پر، کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا، فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علا اوپر، لبنتینی دو اینٹوں پر، مستقبلن، جن کا رخ تھا بیت المقدسی، بیت المقدس کی طرف، لی حاجتی، ہی اپنی حاجت کے لیے. اسی طرح ایک اور روایت میں یہ تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیسی ہیں اس کو سمجھ لیجئے. دیکھیے پہلے دور میں لوگ کھلی جگہوں پہ جاتے تھے، اوپن میں، نہ کہ ادھر ادھر کوئی اور معاملہ ہوتا تھا، تو اس صورت میں سچویشن اور تھی. آج ہمارے آپ کے پاس واش روم کے ارد گرد دیواریں بھی ہیں، اور لٹرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ واش روم ایسے ہیں کہ اس میں کوئی اور پوزیشن ممکن ہی نہیں ہوتی. میرا خیال ہے لنڈن کے لوگ تو اس سے بہت زیادہ آگاہ ہوں گے. سم ٹائم آپ ہاف باتھ روم جو سیڑھیوں کے نیچے بنواتے ہیں، یا آپ کا کوئی بہت چھوٹی سی جگہ آپ کہتے ہیں چلے ایک سیپریٹ ٹوائلٹ لگ جائے، اب آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، تو اٹس اوکے، نو پرابلم. ایز سون ایز جب آپ دیواروں کے اندر ہیں تو ڈزنٹ میٹر، لیکن جب کوئی اوپن میں جائے، جیسے آج کل ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کرتے، کیونکہ سفر میں بھی جاتے ہیں تو راستوں میں الحمدللہ پکنک اسپاٹس ہیں، ریسٹنگ ایریاز ہیں، اور کچھ نہیں تو میک ڈونلڈ کا باتھ روم تو ہے ہی ہے نا، تو اس لیے ایسی بات نہیں ہے. اوپن میں کریں تو پھر قبلہ رخ منہ یا بیک کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کا جو عمل ہمیں دکھ رہا ہے یہ اس دور کے حالات کے مطابق تھا. تو جو بات میں نے آپ کو بتائی یہ خلاصے میں بتائی ہے کہ واش روم کے اندر موجود ہیں آپ، تو پھر اگر قبلے کی طرف پیر ہو گیا، منہ ہو گیا، تو نو پرابلم. کتنی تو بیچ میں جہتے ہیں. اسی سے ایک معروف مسئلہ جو میڈ ان پاکستان مسئلہ یا انڈین ہوگا، وہ کیا ہے کہ جی سوتے ہوئے قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرنے. سنا ہوا یہ آپ نے مسئلہ؟ ٹھیک مسئلہ ہے نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے ظاہری تعظیم بہت اچھی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تعظیم بھی ہوتی ہے، لیکن ایسی باتوں میں الجھ جانا اور اصل کو چھوڑ دینا نہیں، اس کی کوئی روایت، کوئی سند نہیں کہ قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا. بلکہ ایک دور ایسا ہے آپ کو ہوتا ہے کہ قبلہ لوگوں کے لیے ایک ایسا مرکز تھا کہ ایک بچہ تھا قبلے میں پیدا ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری تعظیم بہت اچھی، جان کے کوئی غصے میں نہ، برا کب ہوگا کوئی کہ ہاں میں نے جان کے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، جان کے میں نے قبلے کی طرف پاؤں کرنا ہے، دیٹس اٹ. تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ ظاہری تعظیم تو بہت ہے، اسی میں سے یہ ایک چیز ہے. پھر اسی طرح امام بخاری کا موقف کیا ہے کہ بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ یا پشت کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، وہی بات آ گئی. یہ پابندی کب ہے؟ بیرون آبادی، یعنی اوپن میں جب لوگ کرتے ہیں یہ معاملات، تب ہوگا. چلیے عورتوں کی بھی ایک بات پڑھ لیتے ہیں کہ عورتیں کیا کریں. خروج النساء الی البرازی، عورتوں کا قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنا. پہلے دور میں گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے، لوگ اس کو پسند بھی نہیں کرتے تھے. ایون جب گھروں میں بھی ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے بیک پہ ہوتے تھے. آپ یہاں رہنے والے بہت اچھی طرح سمجھیں گے کہ جب گھر کی ویڈتھ تھوڑی ہوتی ہے لیکن ڈیپتھ زیادہ ہے نا، تو جو آج بہت سارے لوگوں کا بیک روم ہے، وہاں پہلے باتھ روم ہوتے تھے. یہ جو گورے لوگ ہیں انہوں نے بھی گھروں کے اندر نہیں بنائے تھے، وہ بیچ میں سے جو سمجھ لیجئے کہ لان ہے اس کو گزار کے وہاں جاتے تھے. لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے کہ گھر کے اندر گندگی اور بدبو. اور ریئلی اگر فطرتاً دیکھا جائے، آج تو انتظامات اتنے اچھے ہیں نا، آپ کے فین بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا فریشنرز بھی ہیں اور آٹو سپریز بھی ہیں، تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو لہٰذا باہر جاتے تھے، تو مکہ میں، مدینہ میں تو حالات ہی فرق تھے. تو عورتیں کیسے جاتی تھی؟ حضرت عائشہ سے سنتے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن یخرجن باللیل, کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو ازواج تھی وہ رات کے وہ قضائے حاجت کے لیے نکلتی تھی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری عورتیں, فرسٹ لیڈیز آف دی ورلڈ, لیکن وہ کہاں جاتی تھی؟ باہر جاتی تھی. رات کو کیوں جاتی تھی؟ پردے کے لیے. ظاہر میں نہ آئے, حیا نہ ہو, خاموشی کا وقت ہے, مرد نہیں ہوتے, اور ایک قسم کی باری لگی ہوئی تھی. سارے لوگ چونکہ اوپن میں جاتے تھے تو پتا چلا کہ عورتیں بھی گئیں تو مرد بھی چلے گئے, تو اسے اوائڈ کرنے کے لیے وہ رات کو جاتی تھی. اذا جب تبرسنا الى المسانی, جب وہ مسانے کی طرف جاتی تھی, وہو سعید افیح, اور وہ ایک کھلی جگہ تھی, یعنی یہ جگہ کا نام لکھا ہوا ہے. اور مسانے مسنا آپ نے دیکھا, شیخ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آیا, یعنی کیسی عمارتیں بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک کھلی سی جگہ تھی, وہاں جاتی تھی. وہو سعید افیح, وہ ایک جگہ تھی وہاں کھلی سی. فکان عمر, اور تھے عمر, یقول للنبی, جی کہتے تھے نبی کو. سبحان اللہ, عمر کی غیرت آج اللہ ہم سب کے مردوں کو دے دے. ان کو رات کو عورتوں کا نکلنا بھی پسند نہیں تھا قضائے حاجت کے لیے, تو آ کے اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے, احجب نساء, کا پردہ کروا دیجیے اپنی عورتوں کو. فلم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلوا, لیکن رسول اللہ ایسا نہ کرتے, یعنی جب حکم نہیں تھا آیا ہوا پردے کا, اور حضرت عمر کو غیرت آتی تھی کہ ان عورتوں کو کوئی دیکھ نہ لے, تو لہٰذا اللہ کے نبی نہ کرتے. اب ہوا کیا, ایک دن خرجت سودا ابن تو زما, ایک دن نکلی سودا بنت زما, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ وائف تھی, بوڑھی عورت تھی, اور ایک دن وہ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی. زوج النبی, جی جو نبی کی بیوی تھی, لیلتن, راتوں میں, من اللیالی, ایک رات, العشا, عشاء کے بعد, یعنی عشاء کے وقت حضرت سودا جو تھی قضائے حاجت کے لیے نکلی. وکانت امرات طویلتن, وہ ایک طویل قامت عورت تھی, یعنی لمبے قد کی خاتون تھی. مراد یہ کہ ذرا خال حلیہ ان کا عام عورتوں سے فرق تھا تو پہچان جاتی تھی. ہوتا ہے نا انیوژل ہائٹ ہو, یا بندہ موٹا زیادہ ہو یا لمبا زیادہ ہو, تو دوسری عورتوں میں پہچانا جاتا ہے. تو خیر وہ لمبی تھی تو حضرت عمر پہچان گئے. فناداہا عمرو, تو عمر نے ان کو پکارا, الا قد عرفنا کر یا سودا, تو آگاہ رہو سودا, ہم نے تم کو پہچان لیا. حرصاً علی ان ینزل الحجاب, اس سے حضرت عمر کی یہ خواہش تھی کہ حجاب کا حکم اترے. فانزل اللہ عز و جل الحجاب, تو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے پردے کا یہ حکم. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عمر کے مانگے ہوئے پردوں کا آج عورتوں نے کیا کر دیا. آپ کو پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جنت دکھائی گئی, اور وہاں ایک محل تھا جہاں حضرت عمر کا نام لکھا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی وہاں سے پلٹ آئے, پیچھے اس کے کوئی عورت تھی اور مطلب وہاں بیٹھی ہوئی تھی. تو بعد میں اللہ کے نبی نے جب یہ خواب بیان کیا تو آپ نے کہا کہ میں عمر کے محل کے قریب بھی نہیں گیا, پلٹ آیا کہ مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی, کیونکہ عمر یہ نہ کہے کہ میرے محل میں کوئی عورت تھی تو اللہ کے نبی آپ کیوں گئے. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم واقعی حضرت عمر کی اس مزاج کو آج لا کر دیکھیں تو ہمارے اپنے کتنے مسئلے ختم ہو جائیں. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رات کو بھی وہ پردے میں گئی ہوئی تھی, تبھی تو عمر نے کہا کہ اے سودا, پردے کے باوجود تمہیں پہچان گیا ہوں. یعنی عمر کو غصہ آ رہا ہوتا تھا کہ عورتیں کیوں نکلتی ہیں. دیکھیے جس کے اندر غیرت ہوگی نا, اس کو عورتوں کا پردہ نکلنا بھی پسند نہیں ہوگا. عورتوں کا تو کیا, مردوں کا پسند نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہمیں وہ مزاج سمجھ آتا ہے جو ہمارے دین کا ہے, اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رکھتا ہے. اب آج تو ایسی کوئی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اس لیے ہم نہیں سمجھتے, لیکن اس پہ قیاس کرتے ہوئے ہم باقی دوسری چیزوں کو تو سامنے رکھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں ان ساری باتوں کے بارے میں جو بھی ہم نے پڑھا؟ جی آپ.
جیسے ہم حرم میں جاتے ہیں نا, تو وہاں یہ مشاہدے میں آتا ہے کہ لوگ سو رہے ہیں, تو سوتے
جی ان کا سوال ہے کہ حرم میں اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور عموماً لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ اگلی نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں, پھر بیٹھ کے اونگ بھی لگتی ہے تو پھر اٹھ جاتے ہیں. تو یہ بہت اہم سوال ہے, سن لیجئے. اس طرح بیٹھنے سے اگر اونگ آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی, آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے اس طرح کرسی پہ یا گاڑی میں تھے, اور ایک دفعہ بس اونگ آئے اور جھٹکا آئے اور اٹھ کے, جو اس کی حکمت ہے. میں نے کتاب و طہارہ جو پڑھائی تھی اسٹوڈنٹس نے سنی ہوئی یہ بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں اس طرح کا چیک, وہ ہمارے پرائیویٹ پارٹس کے اندر وہ ایک دفعہ سے وہ بند ہو جاتا ہے. جب کوئی لیٹتا ہے نا تو وہ وال کھل جاتا ہے. لیٹتے ہی ہوا خارج ہونے کے چانسز زیادہ. رات کو آپ ہوتا ہے ہم سوتے ہیں تو ہم سب کی ہوا نکلتی ہے. صبح آپ کبھی اٹھ کے فوراً جب بیٹھ کے جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو بھی جسم سے ہوا نکلتی ہے. تو جب لیٹتے ہیں نا تو وہ جسم سے ہوا نکلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جب بیٹھے ہیں, اگر بیٹھنے میں نیند بھی آ گئی تو چانسز ہیں کہ ہوا جسم سے نہیں نکلے گی, کیونکہ یہاں وال آپ کا کلوز ہے. یہ اصل حکم ہے. ہمارے لیے جو آخری مسئلہ وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اون تنگ آ گئی ہلکی سی. صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم مغرب کے بعد عشاء کے انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے, اونگتے تھے, بیٹھتے تھے, اور اتنے میں میری آنکھ بھی لگ جاتی تھی اور مؤذن اذان دیتا تھا اور ہم اسی وضو سے اٹھ کے نماز پڑھ لیتے. ٹھیک ہے, چلیے, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.